आंगन में झूले की हल्की चर चर अब खामोशी का हिस्सा लग रही थी। शकुंतला ने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा और कसकर पकड़ा और बोली, माँ, मैं सोच रही थी मैं खुद जाकर श्यामली को सब बता दूं। रत्ना देवी की आंखें धीरे धीरे उसकी ओर उठीं। उनकी नज़र में एक बेचैन सी चमक थी, जैसे कई सालों के दबे हुए राज अचानक हवा में तैरने लगे हों। नहीं, उन्होंने कठोर आवाज में कहा। शकुंतला चौंक गई। पर माँ, नहीं, रत्ना देवी इस बार और धीमे पर और तेज वजन वाली आवाज में बोली, तू नहीं बताएगी। शकुंतला बेचैन होकर पास बैठ गई। माँ, वो पूछ रही थी उस कमरे के बारे में, मधु से, आवाजें, महक, ताला, सबके बारे में मैं सुन रही थी। अगर उसे कोई आधा अधूरा सच पता चला तो वो और उलझेगी। बेहतर है मैं बता दूं साफ साफ, ताकि। ताकि क्या? रत्ना देवी की आवाज अचानक धीमी होकर चुभने लगी। ताकि हवेली का संतुलन फिर बिगड़ जाए, ताकि वो भी उसी रास्ते पर चले जैसे। वो एक क्षण के लिए रुक गई, सांस भारी हो गई। जैसे पहले लोग चले थे? शकुंतला के होंठ सूख गए। पर माँ, अब वक्त बदल गया है। श्यामली कोई कमजोर लड़की नहीं है, वो समझ सकती है। अगर हम उसे अंधेरे में रखेंगे तो। अंधेरा बचाता है, रत्ना देवी बोली। और सच? शकुंतला ने धीमे पूछा। सच नाश करता है। आंगन जैसे और ठंडा हो गया। पेड़ की डाल हिली भी नहीं, फिर भी पत्तों से एक सरसराहट उठी, जैसे हवा को भी ये बातचीत पसंद ना आई हो। शकुंतला ने कांपते स्वर में कहा, पर माँ, जिस दिन उसे खुद कुछ दिख गया, कुछ सुनाई दे गया, तब वो हमें ही दोष देगी कि हमने बताया क्यों नहीं। रत्ना देवी ने गहरी सांस ली। श्यामली जिज्ञासु तो है, पर उतनी मजबूत नहीं जितना तू समझती है। उस कमरे में जो है वो किसी को भी टूटने में एक रात लगती है। शकुंतला की रीढ़ में डर उतर गया। कुछ पल दोनों महिला चुप रहीं, फिर शकुंतला ने हिम्मत जुटाई। माँ, अगर कोई चीज इतनी खतरनाक है तो उसे बंद रखने का क्या मतलब? क्यों नहीं? क्योंकि कुछ चीजें बाहर आएं तो विनाश करती हैं, रत्ना देवी बोली, और अंदर बंद हों तो सिर्फ कुछ लोगों को खाती हैं। शकुंतला का चेहरा सफेद पड़ गया। रत्ना देवी ने झूले के बांस पर उंगलियां टिकाईं और धीमे झूला हिलाया। उनकी आंखें कहीं दूर देखने लगीं, जैसे यादों की परतें खुलने लगी हों। श्यामली को सच पता होना चाहिए, पर अभी नहीं, उन्होंने कहा, और तू उससे दूर रह, जितना दूर रह सके, क्योंकि जो चीज ताले के पीछे है वो तेरी आवाज पहचानती है, शकुंतला। शकुंतला एक क्षण को सांस लेना भूल गई। मेरी? रत्ना देवी ने बस सिर हिलाया। शकुंतला का दिल धक से गिरा। वो समझ नहीं पा रही थी, डर रही थी, या एक पुरानी याद उसके भीतर जिंदा हो उठी थी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ साफ दिखने लगी। और दूसरी ओर उसी समय शहर के कॉलेज की कैंटीन में माहौल एकदम अलग था। दूसरी तरफ कॉलेज में आर्यन और विशाल। कैंटीन में हल्की गूंज थी। कोई हंस रहा था, कोई नोट्स देख रहा था, कोई चाय की कतार में खड़ा था। कोने वाली मेज पर आर्यन और विशाल बैठे थे। विशाल तो किताबों में डूबा था और आर्यन ऐसे बैठा था जैसे दुनिया उसकी जेब में हो, आधा ध्यान मोबाइल पर, आधा अपने बाल सेट करने में, और बचा कुचा एटीट्यूड हवा में तैर रहा था। विशाल ने माथा पकड़ा। यार आर्यन, ये प्रैक्टिकल्स खा जाएंगे, इतना सारा सिलेबस कौन याद करे? कभी कभी लगता है पढ़ाई नहीं सजा काट रहा हूं। आर्यन ने मोबाइल एक तरफ रखते हुए मुस्कराया। आराम कर चैंप, दुनिया टेंशन से नहीं दिमाग से चलती है, विशाल ने उसे गुस्से से देखा। हाँ, तेरे लिए आसान है बोलना, तू तो हर चीज में भी पास हो जाता है, मेरा तो गणित ही दुश्मन है। आर्यन ने सोडा की बोतल खोली। देख, दिक्कत सिलेबस नहीं, तेरी कॉन्फिडेंस की है। बता, नींद कितनी ली? 4 घंटे। नाश्ता? चाय और बिस्कुट, हफ्ते भर से? हाँ, आर्यन ने सिर पकड़ा। तू पढ़ नहीं रहा, तू अपना पोस्टमार्टम कर रहा है, विशाल ने हंसते हंसते कहा। तो क्या करूं? आराम कर, टेंशन मत ले। और हाँ, आर्यन ने आंख दबाई, अगर तूने आज भी क्लास में नींद में गिरकर मेरी इज्जत उतारी तो खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। दोनों हंस पड़े। यही हंसी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक हल्की आवाज आई। विशाल? विशाल ने चश्मा ठीक करते हुए मुड़ा। आर्यन भी मुड़ा और उसे देखकर अपने आप मुस्कुराया। लड़की बहुत साधारण सी थी, तन पर हल्की नीली टी शर्ट, डेनिम जीन्स, कंधे पर किताबों से भरा बैग और नाक पर पतला फ्रेम वाला चश्मा, जिसे वो हर 2 सेकंड में ठीक कर रही थी। बाल हल्के से बिखरे हुए, चेहरे पर शर्म और घबराहट का मिश्रण। नाम था गुंजन और उसकी आवाज में वही मासूमियत थी जिसकी वजह से उसे देखकर कोई भी नरम पड़ जाए। वे
विशाल, वो उसने किताबें सीने से चिपकाई। मुझे ट्यूशन चाहिए था मैथ्स का। विशाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पहले से ही टेंशन में था, ऊपर से किसी और को पढ़ाना। अरे ट्यूशन, उसने हकलाते हुए कहा। मैं? पर मैं तो खुद, गुंजन ने तुरंत कहा। प्लीज मुझे पास होना है, बस बेसिक, बहुत बेसिक पढ़ा देना। मैं घर पर कोशिश करती हूँ पर समझ नहीं आता। उसने नाक हल्के से रगड़ी, फिर चश्मा ऊपर किया, फिर घबरा कर मुस्कराई। वो इतनी मासूम लग रही थी कि मना करना पाप जैसा लगता। पर विशाल ने फिर भी कहा, अरे नहीं, मैं सच में, मैं करवा दूंगा, आर्यन ने बीच में कहा। विशाल ने झटके से आर्यन की ओर देखा। ओए, आर्यन ने मुस्कान दबाते हुए कहा, मेरा मतलब ये तुझे पढ़ाएगा, तेरा हीरो बहुत टैलेंटेड है। गुंजन ने राहत की सांस ली। धन्यवाद। उसकी मुस्कुराहट इतनी सच्ची थी कि विशाल के मुंह से एक पल को आवाज ही नहीं निकली, वो बस हांफता रह गया। गुंजन फिर नर्वस होकर बोली, मैं शाम को लाइब्रेरी में बैठी रहूंगी, अगर तुम्हें समय मिले तो। विशाल की आंखें फटी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही आर्यन बोला, आ जाएगा पक्का, तू चल। गुंजन ने सिर हिलाया, चश्मा ठीक किया, एक बार नाक पोंछी और धीरे धीरे चली गई। जैसे ही वो थोड़ी दूर गई, विशाल घूर कर बोला, तो मेरा दुश्मन है क्या? आर्यन ने हंसते हुए कहा। अरे भाई, लड़की इतनी प्यारी, इतनी मासूम, और तू मना कर रहा था। कम से कम पढ़ाते पढ़ाते सोशल स्किल्स तो सीखेगा। विशाल ने माथा पीटा। मैं खुद डूब रहा हूँ और तू मुझे किसी और को बचाने भेज रहा है। आर्यन ने कंधे पर हाथ रखा। जिंदगी वही मजेदार बनती है जहां तू डरता है। और लड़की अच्छी लगी मुझे, सीधी सादी, चश्मा ऊपर, नाक साफ, बहुत रियल वाइब है। विशाल ने थकी आवाज में कहा, तेरे कारण मेरी शाम गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए बोतल उठाई। वेलकम। हवेली, फिर से। आंगन में रत्ना देवी झूले पर थी और शकुंतला उनके सामने खड़ी, दिल धड़क रहा था। तो फिर माँ, शकुंतला ने परेशान स्वर में कहा, हम क्या करें? रत्ना देवी ने आंखें बंद कर ली। हम वही करेंगे जो हमेशा किया है, छुपाएंगे नहीं। रत्ना देवी ने आंखें खोली, इस बार उनमें एक अनकहा डर था। हम बस इंतजार करेंगे, क्योंकि हवेली में सच कभी किसी को बताना नहीं पड़ता। उन्होंने झूला हल्का सा आगे पीछे किया और कहा, वो खुद चलकर सामने आता है, और जब आएगा तो भी रोके नहीं रोक पाएगी शकुंतला। शकुंतला का दिल बुरी तरह कांप गया। और हवेली की दूसरी मंजिल पर ठीक उसी समय बंद कमरे का ताला हल्का सा धीरे से खनक उठा, जैसे किसी ने उसे भीतर से छुआ हो।